अभी भाव का पद गया तो भाव का ही यहां लेख आ रहा है। मनुष्य को भाव की प्रधानता रखते हुए व्यवहार करना चाहिए। भीतर में निस्वार्थ भाव है, परंतु बाहरी व्यवहार में यदि स्वार्थ का काम दिख भी आए तो बाधा नहीं है। फल की इच्छा न होने पर भी, फल की इच्छा नहीं रहने पर भी आसक्ति रह सकती है। नैव तस्य कृते नार्थो नाकृते नेह कश्चन है। ज्ञानी महात्मा होते हैं, उसके कर्म करने में और न करने में आसक्ति नहीं है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, केवल कर्म करने में अधिकार है। फल में कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कर्मों के फल का हेतु तू मत बन, और कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। ये चारों बातें बड़ी सावधानी से बरतने की हैं। कर्म न करने की प्रवृत्ति न हो जाए, इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमको कुछ लेना नहीं देना नहीं तो फिर हम कर्म करें ही क्यों, ऐसा नहीं। कर्म करना चाहिए कि जब हमारा फल से संबंध नहीं है, जब हमें कर्म से कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर कर्म करें क्यों। इसका समाधान अच्छे अच्छे जानकार लोगों के पास नहीं है। भगवान ने ये क्यों कहा कि कर्म न करने में भी आसक्ति मत रख, लेकिन भगवान का कहने का विशेष आशय है। वो इसलिए कि कर्म न करने से उसकी कर्म न करने में आसक्ति हो जाएगी। हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम क्यों कर्म करें, तो कर्म न करने में आसक्ति हो जाएगी, कर्तव्य कर्म से वंचित रह जाएगा। भगवान ने कहीं राग का कहीं राग द्वेष का त्याग बताया। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। भोगों में और कर्मों में आसक्त नहीं होता है, उस समय वो बड़ा भारी त्यागी है और योगारूढ़ होता है। क्रिया और पदार्थ दोनों में आसक्ति की संभावना है, इसलिए दोनों के त्याग की बात कही। वैसे राग के साथ द्वेष का भी त्याग समझ लेना चाहिए, क्योंकि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम, ये सब अविद्या के क्षेत्र हैं, अविद्या की जगह है, और अविद्या का मूल कामना है। कामना पर आघात लगता है तो द्वेष होता है, इसलिए मूल कारण कामना और आसक्ति का त्याग है। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम् रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर आसक्ति निवृत्त नहीं होती। जैसे किसी को भोजन नहीं मिला तो भोजन तो उसके पास नहीं है लेकिन उसके पास भूख तो है ना। ऐसे ही कोई वस्तु हमारे पास नहीं, कोई विषय हमारे पास नहीं, पर उसकी आसक्ति तो रह गई ना। वो आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। ऐसी आसक्ति स्थित प्रज्ञ महापुरुष के परमात्मा का साक्षात्कार करने पर निवृत्त हो जाती है। अनासक्त होने से द्वेष अभिमान का भी अभाव हो जाता है। अनासक्ति की तरफ अभी हम चले नहीं हैं, इसलिए अनासक्ति में कितना लाभ है ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। काम क्रोध लोभ सबका अपने आप अभाव हो जाएगा, एक अनासक्ति आ जाएगी। तो गीता में कहा संगात संजायते कामे, आसक्ति से कामना होती है। आसक्ति नहीं रहेगी तो कामना नहीं रहेगी, कामना नहीं रहेगी तो क्रोध नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, लोभ नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। द्वेष का अभाव राग के अभाव के अंतर्गत आ गया। ये राग द्वेष है ये तो बहुत सूक्ष्म है, और काम क्रोध है ये स्थूल है। काम क्रोध समझ में आते हैं लेकिन छिपे हुए राग द्वेष समझ में नहीं आते हैं। राग द्वेष और हर्ष और शोक ये चार हैं, ये सब विकारों के राजा हैं, चारों दिशाओं के राजा हैं। भगवान क्षेत्र के विकार बताते हैं, क्षेत्र माने शरीर। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति। इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, इंद्रियों का ज्ञान है, इनको धारण करना है, और ये स्थूल पिंड है, इसको एक इसका इसकी बनावट, इसका स्वरूप, इसका संघात माने सब अवयवों का मिलना, ये विकार है। जिस जगह सुख दुख में समता बताई है वहां हर शोक का अभाव ले लेना चाहिए, हर शोक नहीं होना चाहिए, यही समता है। काम क्रोध वियुक्ता नाम कह दो चाहे राग द्वेष वियुक्त इससे कह दो, एक ही बात है। गीता के अंत में त्याग से भगवत प्राप्ति लेख दिया है, उसमें निष्काम भाव की व्याख्या विस्तार से की है। राग द्वेष किसी आदमी में स्वाभाविक कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, परंतु ये सब कम या ज्यादा भगवान के भजन ध्यान से कम होते हैं। भगवान में तन्मय हो जाने पर ये रहते ही नहीं है, इसलिए भजन ध्यान करना चाहिए। और भगवान की किसी एक लीला के ध्यान में डूब जाना चाहिए, तन्मय होना है, किसी भी भगवान की लीला में डूब जाओ। राम जी वनवास में है, ऐसे बैठे हैं, ऐसे लक्ष्मण जी को ज्ञान देते हैं, हम भी वहां ज्ञान सुनते हैं, ऐसे लीला में डूब जाओ, भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं, तो ऐसे तन्मय हो जाने से ये राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने बतलाया है कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से मन तन्मय होता है। जहां भक्ति का भेद बताया वहां शरणागति भी शामिल ही है। जहां शरणागति के भेद बतावे वो भक्ति भी भक्ति में शामिल है। मत्कर्म कृत में मेरे परायणता है तो उसके अंतर्गत भक्ति आ गई। मन बनाव भाव में भी भक्ति के भेद है, वहां शरणापन्न उसके अंतर्गत है। एक आदमी रुपए के उद्देश्य से व्यापार कर रहा है, जब उसका उद्देश्य रुपयों का है तो लोभ ही लोभ दिखेगा। माल के खरीदने में भी कमा लूं, बेचने में भी कमा लूं, माल घटिया है तो भी कमा लूं, माल बढ़िया है तो और ज्यादा कमा लूं, ऐसे उसकी दृष्टि में चारों तरफ लोभ छा जाता है। ऐसे ही जिसका मूल लक्ष्य लोकोपकार है, उसके प्रत्येक व्यवहार में लोकोपकार होगा। जिसकी क्रिया राग द्वेष के नाश के लिए है, उसके लिए वही चाल रहेगी कि भाई मुझे तो राग द्वेष का अभाव करना है। हमारे कहने का मतलब है कि हमारा लक्ष्य क्या है, अपने लक्ष्य का ही पता नहीं है। राग द्वेष का अभाव करने का लक्ष्य होगा तो वहां स्वार्थ की बात पैदा होगी नहीं, और जिसके स्वार्थ का उद्देश्य है वहां पर राग द्वेष जरूर आएगा। हृदय में राग द्वेष का अभाव का उद्देश्य रखोगे तो आपकी छोटी से छोटी क्रिया भी बहुत बड़ी क्रिया, बहुत बड़ी शिक्षा देने वाली होगी। और भीतर में यदि राग द्वेष भरा पड़ा है और उस राग द्वेष के वशीभूत होकर यदि आप क्रिया करते हो तो ऊंची से ऊंची दिखने वाली क्रिया भी घटिया दर्जे की है। जो बात युक्तियों से शास्त्रों से समझी जाए उसमें श्रद्धा की कमी है। महात्मा ने कह दिया और मान लिया, महात्मा की बात को युक्तियों से समझोगे फिर शास्त्र में लिखी हुई तब समझोगे तो फिर ये श्रद्धा की कमी है। वैद्य कुपथ्य से सचेत करता है कि कुपथ्य मत करो। मनुष्य समझ भी लेता है कि ये कुपथ्य है फिर भी सेवन करता है। इसका कारण क्या है? या तो पदार्थ में आसक्ति है इसलिए कुपथ्य का सेवन होता है, या फिर वैद्य में अश्रद्धा के कारण से उसकी बात नहीं मानी जाती। एक वैद्य बोलता है कि गुलगुला पकोड़ा मत खाना, तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी। तो रोगी पहले समझता है नहीं खाएंगे, पर घर में जब गुलगुला पकोड़े की सुगंध आती है तो उसे रहा नहीं जाता है, वो खा लेता है, क्योंकि उसकी गुलगुला पकोड़े में आसक्ति हो गई। अथवा वैद्य की बात की बेपरवाही क्या है, वैद्य तो यूं ही कहते रहते हैं। दो में से एक कारण जरूर है, या तो आसक्ति और या अश्रद्धा। इसलिए भगवान ने निष्काम कर्म के प्रकरण में फल और आसक्ति के त्याग पूर्वक कर्म करने के लिए कहा। देखो ये जो काम है, कर्म है, काम करते हैं, ये सांप है और उसमें आसक्ति है तो जहर है। अब यदि सांप में जहर नहीं हो, जहर की थैली निकाल लो अब उस सांप को गले में लिपटाए रखो, क्या फर्क पड़ता है? सांप के विष वाले दांत को अलग कर देना महत्वपूर्ण बात है। साधक कहते हैं हम सुनते हैं परंतु समझ में आ जाए तो काम बन जाए। किसी अंश में मानते तो हैं पर श्रद्धा की कमी के कारण पूर्ण रूप से नहीं मानते। इसलिए वैराग्य और उपरति इन दो को साथ में रखना चाहिए। अपने अंदर वैराग्य और उपरति की वृत्ति को समाप्ति मत होने दो। विवेक वैराग्य भगवान का भजन करने से बढ़ता रहता है और वैराग्यवान पुरुषों के संग से वैराग्य बढ़ता है। इसलिए बारंबार वैराग्य की वृत्तियां बढ़ाओ। भजन ध्यान से जो फायदा होता है वो कर्म फल त्याग से होता है। फल त्याग वैराग्य से होता है। बहुत गहरी बातें बोल रहे हैं। संग ही अटकाने वाली चीज है। कंचन कामनी मान बढ़ाई इनमें से किसी में भी आसक्ति हो गई तो फिर उसके बाद त्याग करना कठिन है। प्रबल वैराग्य हो जाए तो ये कठिनता समाप्त हो सकती है, नहीं तो ये बहुत गहरी छिपी हुई वासनाएं हैं, कंचन की, कामनी की, मान बढ़ाई की। ये चार चीजें बड़ी खतरनाक है। भगवान के भजन ध्यान में प्रेम और संसार के भोगों से वैराग्य, इतना ही तो करना है। पर ये आप लोगों के लिए पहाड़ हो रहा है। कैसे बोलते हैं, भगवान के भजन ध्यान में प्रेम और संसार के भोगों से वैराग्य, करना तो इतना ही है जो पाप लोगों के लिए पहाड़ हो रहा है। सांसारिक पदार्थों में सुख का विश्वास हो गया कि इसमें सुख मिलेगा और परमात्मा के विषय में आनंद मिलेगा इस विश्वास की कमी है, इसलिए सब अड़ंगा हो रहा है। इसलिए विवेक और गुण बुद्धि से किसी प्रकार से परमात्मा में विश्वास करो, परमात्मा की महिमा समझो। विचार से जितना साधन हमको करना चाहिए उतना साधन हम करते नहीं है, इस कारण शरीर में और संसार में आसक्ति होती है। श्रद्धा की कमी साधन में कमकसपना है। उत्साहहीनता में अविश्वास कारण है, तभी तो उत्साह नहीं हो रहा है। गीता जी ने लिखा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। एक और रहस्य की बात बताते हैं, सावधानी से सुनना, बहुत अच्छी बात है। एक बहुत रहस्य की बात बताते हैं। वर्तमान में जो आपको संतोष है, भगवान के बिना आप जो अपना काम चला रहे हैं, यही आपके जीवन में बड़ी भारी अटकाने वाली बात है। ठीक है, अभी मार तो गाड़ो ही चाले ठीक है। ये जो भगवान के बिना काम चलाते हैं, ये अटकाने वाली बात है। परमात्मा में श्रद्धा होने से संसार से उपरती होती है। शास्त्र, महात्मा, ईश्वर और परलोक, इन चार में तो विश्वास होना ही चाहिए ना। यदि शास्त्र पर विश्वास नहीं हो तो महात्मा पर करो, भगवान पर विश्वास नहीं होता तो महात्मा पर करो, परलोक में विश्वास नहीं है तो महात्मा की बात पर विश्वास करो। कम से कम एक जगह तो विश्वास करो। एक जगह विश्वास कर लोगे तो फिर चारों जगह ही विश्वास हो जाएगा, बाकी तीन जगह विश्वास हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि शास्त्र, महात्मा, ईश्वर और परलोक में विश्वास कर लोगे तो संसार से ये मन उचट जाएगा। बार बार ये ध्यान में आएगा कि अरे ये धन परलोक में तो काम आएगा नहीं, मैं तो यहीं छोड़ के मर जाऊंगा, ये पैसा मेरे मरने के बाद मेरे लोक में कैसे काम आएगा, क्योंकि मेरे बाप दादों ने छोड़ा है, वो हम देख ही रहे, हमारे सामने पड़ा है, वो उनके काम नहीं आ रहा है, तो ऐसे ये पैसा मेरे मरने के बाद मेरे क्या काम आएगा। पैसे से मन उचट जाएगा, मान बड़ाई से मन उचट जाएगा, कंचन कामनी से मन उचट जाएगा। ध्यान कर रहे हैं ये अच्छा है, परंतु नेत्र बंद करके आप ध्यान करते हैं उसमें नींद नहीं आ जाए इसका ख्याल रखो। आंख खोल करके ध्यान करते हो तो बाहरी दृश्य पदार्थ आपके अंदर न घुस जाए इस बात का ध्यान रखो। कभी कभी लोगों को ध्यान के अंदर बहम हो जाता है, आ जाती तो है नींद और वो मान लेते हैं समाधि नींद आती है और वो समाधि मान लेते हैं, समाधि लग गई, बैठ रहे थे ऐसी समाधि लगी, उनको पता ही नहीं रहा, पुस्तक वगैरह छूट गया, समझ गए नींद अलग हो रही। तो सुषुप्ति और समाधि दोनों में क्रिया का अभाव है, पर बहम समाधि का लगा लेते हैं। वास्तव में तो सुषुप्ति और समाधि दोनों में दोनों एक ही है। सुषुप्ति है ये तामसी है, समाधि है ये सात्विक है, इतना ही फर्क है। लक्ष्य छूटने पर और मोह वृत्ति होने पर निद्रा वृत्ति आती है। हम तो सुषुप्ति और समाधि में विशेष भेद नहीं मानते हैं। सज्जनों, अभी वर्तमान स्थिति पर संतोष मत करो। जो भी आपको साधन में लाभ दिखता हो उसमें संतोष मत करो। जितना सत्संग मिलता है उसमें भी संतोष मत करो, आगे चलो, अभी रास्ता बहुत तय करना है। संसार में उलझते उलझते थोड़ा सा सत्संग करने पर शांति मिली, बस उसी को ही सब कुछ मान लिया, आगे चलो। यदि आप वर्तमान में संतोष नहीं करोगे तो आगे बढ़ने की गुंजाइश रहेगी, इसलिए संतोष नहीं करें। कोई यूं ही समझ ले कि मेरे को तो अब परमात्मा की प्राप्ति हो गई, मेरे लिए तो अब कोई कर्तव्य बाकी नहीं है, तो ये भावना कभी मत करना। जब तक ऐसी भावना है, मान्यता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई और मेरे लिए अब कोई कर्तव्य नहीं रहा, तब तक बड़ी भारी गड़बड़ी की संभावना है। नारायण नारायण नारायण। एक एक वचन अमूल्य है। तो शास्त्रों में इस प्रकार के चुने हुए वाक्य नहीं मिलेंगे, ऐसे ऐसे एक साथ इकट्ठे किए हुए हमारी समझ में आ जाए इसलिए ऐसे वाक्य नहीं। जब तक संतोष होता है तब तक गड़बड़ी है।
या इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, यह जीत तुम्हारे हाथों में, अरोहर तुम्हारे हाथों में, अजीत तुम्हारे हाथों में, अरोहर तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे, यह जीत हार सब तेरी है, यह जीत हार सब तेरी है, मेरा इस जग में कुछ भी नहीं, मेरा इस जग में कुछ भी नहीं, मैं जैसा हूँ प्रभु तेरा हूँ, उपचार तुम्हारे हाथों में, मैं जैसा हूँ प्रभु तेरा हूँ, उपचार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरे तड़पन बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं, मेरे तड़पन बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, यदि मानुष का मोहि जन्म मिले, यदि मानुष का मोहि जन्म मिले, तेरे दासों का मैं दास बनूं, तेरे दासों का मैं दास बनूं, फिर अंत समय में प्राण तजो सरकार तुम्हारे चरणों में, फिर अंत समय में प्राण तजो सरकार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नार भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो मैं नर हूँ तुम नारायण हो जहाँ मुझसे करवा लो यह डोर तुम्हारे हाथों में जो चाहो मुझसे करवा लो यह डोर तुम्हारे हाथों में जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों यह गीत तुम्हारे हाथों में अरुहार तुम्हारे हाथों में अरुहार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में
राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग वाला ने बजी वादिया यजनी लाला ने बजवा दिया बजरंग वाला ने बजवा दिया बजरंग वाला ने सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग वाला ने कहते मनोदरी सुने पिया रामणी आ कहीं खूब दिकमाई रे हा कहते मनोदरी सुने पिया रामणी आ कहीं खूब दिकमाई रे हा उनकी जहान की तुम्हारे लाए चढ़ाए दोनों भैया उनकी जहान की तुम्हारे लाए चढ़ाए दोनों भैया सिया राम का डंका लंका में भजवा दिया अंजनी वाला ने बजवा दिया यजनी वाला ने बजवा दिया बजरंग वाला ने बजवा दिया हनुमत वाला ने सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग वाला ने आगे नितिरिया यकल की ओची उनकी करत बढ़ाई रे हा गे नितिरिया यकल की ओची गे नितिरिया यकल की ओची उनकी करत बढ़ाई रे ओ धूम मंडल में पकड़ बता दूं राम लक्ष्मण दोनों भाया ने ओ धूम मंडल में पकड़ बता दूं राम लक्ष्मण दोनों भाया ने सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग वाले ने सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग वाला ने ओ बजवा दिया बजरंग वाला ने ओ बजवा दिया बजरंग वाला ने बजवा दिया बजरंग वाला ने सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया हनुमत वाला ने। आ मेघनाथ सा पुत्र हमारा कुंभकर्ण बले भाई छे। आ मेघनाथ सा पुत्र हमारे कुंभकर्ण बले भाई रे। आ सो जो जन मेरो किलो ऊंचो, सो जो जन मेरो किलो ऊंचो, सात समुद्र जल खाई रे। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग वाला ने। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया हनुमत वाला ने। बजवा दिया बजरंग वाला ने, बजवा दिया बजरंग वाला ने, बजवा दिया बजरंग वाला ने। हनुमत जैसा पायख उनकी लक्ष्मण सा बल भाई ये। ओ हनुमत जैसा पायक उनकी लक्ष्मण सा बल भाई ने। वो जलती अगन में कूद पड़े तेरी कोट गिने नहीं खाई रे। वो जलती अगन में कूद पड़े तेरी कोट गिने नहीं खाई रे। सिया राम का डंका लंका में भजवा दिया बजरंग वाला ने, भजवा दिया बजरंग वाला ने, भजवा दिया बजरंग वाला ने, भजवा दिया बजरंग वाला ने। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग वाला ने। रावण मारे रहा में घर आए घर घर बंटा तो बधाई रे। लंका जीत राम घर आए घर घर बंटत बधाई रे। ओ मात कुशलिया करत आरती, मात कुशलिया करत आरती, तुलसीदास जस गाया रे। आहा मात कुशलिया करत आरती, तुलसीदास जस गाया रे। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया अंजनी वाला ने।